Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। ১৭৪৭ में अफगानिस्तान में कबीलों के सरदारों की एक परिषद का गठन किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि किसी ऐसे शख्स को तलाश किया जाए जो कबीलों को एकजुट करके एक स्वाधीन और शक्तिशाली देश की स्थापना कर सके। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 24वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के कबीलों के सरदारों की परिषद की। इसका उद्देश्य यह था कि किसी ऐसे शख्स को तलाश कर लिया जाए जो सारे कबीलों को एक साथ मिलाकर एक स्वाधीन और शक्तिशाली देश बनाए। काफी विचार विमर्श और चर्चा के बाद सभी की निगाहें एक युवा सरदार की ओर घूम गई जो नादिर शाह की फौज में अपनी बहादुरी और योग्यता का प्रदर्शन कर चुका था और जो दुनिया के सबसे कीमती हीरे को लेकर अपने वतन वापस लौटा था। सरदारों की परिषद ने अहमद खान को अफगानिस्तान का बादशाह चुन लिया। अहमद शाह कोहिनूर को अपने लबादे पर लगाकर शासन का संचालन करता था। अभी ज़्यादा समय नहीं बीता था कि उसके दरबार में एक रहस्यमय दरवेश ने प्रवेश किया। वो दरवेश अहमद शाह से चाहता था कि वो हिंदुस्तान पर हमला करे। दरवेश अपनी विचित्र भविष्यवाणियों के लिए मशहूर था। उसने हिंदुस्तान पर अहमद शाह की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की जिसमें उसे बहुत सारी दौलत हासिल होगी और वो एक महान विजेता बनेगा। अहमद शाह ने भारत के उत्तरी भाग पर हमला कर दिया और रहस्यमय दरवेश की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अहमद शाह का हिंदुस्तान पर हमला एक ऐसी घटना थी जिसका अंग्रेज़ों को इंतज़ार था ताकि हिंदुस्तानी बादशाह फिर से अपनी ताकत और संप्रभुता हासिल ना कर सके। ये वही समय था जब हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों और स्रोतों पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर थी। अंग्रेज़ों ने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के तटीय किले के विस्तार का फैसला किया, लेकिन बंगाल के युवा और बहादुर शासक सिराजुद्दौला की शक्ति से वो डरे हुए भी थे। सिराजुद्दौला ने खत लिखकर अंग्रेज़ों से कहा कि निर्माण कार्यों को तुरंत रोक दिया जाए, लेकिन उन्होंने सिराजुद्दौला की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद बंगाल के शासक ने ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने और किले की ओर फौज के कूच करने का आदेश जारी कर दिया। जैसे ही सिराजुद्दौला की फौज किले के निकट पहुंची, दोनों फौजों में घमासान की लड़ाई हुई। किले पर भीषण गोलाबारी की गई और अंग्रेज़ों को यकीन हो गया कि मदद पहुंचने तक किला नष्ट हो जाएगा। दो अंग्रेज़ कमांडर बच्चों और महिलाओं को जंग के मैदान से बाहर निकालने के बहाने फरार हो गए और उसके बाद किले का कमांडर भी कंपनी के 170 सैनिकों और कर्मचारियों को किले में अकेला छोड़कर नाव में बैठकर भाग खड़ा हुआ। इस तरह विलियम किले पर सिराजुद्दौला का कब्जा हो गया और अंग्रेज़ सैनिकों को कैदी बना लिया गया। कुछ समय बाद इन कैदियों में से कुछ को रिहा कर दिया गया जो अपने वतन वापस लौट गए। उन्होंने कैद में बिताए गए अपने समय को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। कैद के दौरान उन्हें दी जाने वाली यातनाओं की कहानियां अंग्रेज़ों के लिए डरावना सपना बन गई। इस घटना के बाद से हिंदुस्तानियों के हत्याओं की जो खबरें ब्रिटेन पहुंचती थीं उन पर बहुत कम प्रतिक्रिया दिखाई जाती थी। जनवरी 1757 में बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने बंगाल पर हमला कर दिया। उसी समय अफगानिस्तान के बादशाह और दुनिया के सबसे कीमती हीरे के मालिक अहमद शाह ने उत्तर से हिंदुस्तान पर हमला कर दिया और देश के केंद्र दिल्ली शहर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। کیا یہ دونوں حملے ایک ہی سمے پر ہوئے؟ کیا یہ پوری طرح سے ایک سنیوگ تھا؟ شاید اس بار بھی وہی رہسیہ درویش احمد شاہ کے پاس گیا تھا۔ احمد شاہ نے آسانی سے دلی پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ہندوستان کے سمراٹ کے محل میں قیام کیا اور اپنے نام کے سکے ڈھلوائے۔ وہ ایک مہینے تک دلی میں رہا اور جیسے ہی بنگال پر برٹش آکرمڑ سماپت ہوا، وہ دلی چھوڑ کر افغانستان لوٹ گیا۔ انگریزوں نے پہلے فورٹ ولیم کو واپس لیا اور پھر پورے بنگال پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ لکشیہ پراپت کرنے کے لیے انہوں نے وبھن جاتیوں اور سمپردایوں سے بات چیت شروع کی جو ہندو دھرم کے انویائی تھے۔ ہندو دھرم بھارت کے پراچین دھرموں میں سے ایک تھا اور بھارت میں اس کے انویائیوں کی سب سے بڑی آبادی تھی۔ انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ دھارمک مت بھیدوں کو ہوا دی اور ان کے بیچ پھوٹ ڈال کر اپنی سینا میں بڑی سنکھیا میں ہندوؤں کی بھرتی کر لی، لیکن پھر بھی وہ بنگال کے شاسک کی طاقت سے ڈرتے تھے۔ ایک پتر میں برٹش سینا کے کمانڈر نے بنگال کے شاسک کو آشواسن دیا کہ وہ میتری پور سمبندھ رکھ سکتے ہیں، لیکن دوسری اور اسی شاسک کے ایک منتری کو غداری کے لیے راضی کر لیا اور شاسن کے پتن کے لیے سازش شروع کر دی۔ غداری کرنے والے وزیر نے گدی کے وعدے کے بدلے بنگال کی فوج کے بڑے حصے کو انگلینڈ کے ساتھ یدھ سے دور رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو یدھ معاوضے کے روپ میں 10,00,000 لیرا اور کمپنی کے کرمچاریوں اور کمانڈر کو 5,00,000 لیرا دینے کا بھی وعدہ کیا۔ آخر کار غداری کرنے والے وزیر میر جعفر کو بنگال کی سطح سونپ دی گئی، جبکہ واسطوک شاسک انگریز تھے۔ میر جعفر نے برٹش سینا کے کمانڈر کو بنگال میں 30 گاؤں دیے تاکہ گرامیڑ اس کے لیے بدھواں مزدوروں کے روپ میں کھیتی کر سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اس نے انگریزوں کو کئی انیہ اپہار دیے، لیکن اس کا اندازہ غلط تھا کیونکہ انگریزوں کو بنگال کا سارا خزانہ اور ہندوستان کا راج چاہیے تھا۔ کچھ ہی دن بعد شاسک کے محل کے سامنے تٹ پر 200 بڑے اور چھوٹے جہازوں نے لنگر ڈال دیا۔ ان جہازوں کو سونے چاندی اور قیمتی پتھروں اور ہیروں سے بھرا گیا۔ اس سمے اس کا مولیہ 40 ملین پاؤنڈ تھا، یعنی دونوں کے بیچ جو سہمتی بنی تھی اس سے 26 گنا زیادہ۔ انگریز جانتے تھے کہ جو اپنے وطن اور ہم وطنوں کے ساتھ غداری کر سکتا ہے، ان کی پیٹھ میں بھی خنجر گھونپ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ میر جعفر پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ 2 سال بعد انہوں نے کمپنی کے ہتوں کو نقصان پہنچانے کا آروپ لگا کر میر جعفر کو ستا سے بے دخل کر دیا اور اس کے داماد کو بنگال کا نیا حاکم نیوکت کر دیا۔ پشچم بنگال کا شاسک اب پوری طرح سے انگریزوں کا پٹھو تھا۔ دوسری اور دلی میں کمزور مغل بادشاہوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ 1769 میں شاہ عالم دوتی کو تخت پر بیٹھایا گیا اور اس نے مغل سامراج کا گورو لوٹانے اور اسے پھر سے مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ اس نے انگریزوں کو پشچم بنگال سے نکالنے کے لیے 18ویں صدی کے مد میں بنگال پر چڑھائی کر دی، لیکن اسی سال احمد شاہ افغانی پھر سے ہندوستان کی پیٹھ میں چھرا بن کر وہاں پہنچ گیا اور اس نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ شاہ عالم کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور وہ ایک سمجھوتے کے تحت بنگال اور بہار کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو سونپنے پر مجبور ہو گیا۔ حالانکہ اس سے 1 سال پہلے ہی فرانسیسی ہندوستان سے پیچھے ہٹے تھے۔ اب وشال اور سمرد دیش ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے میدان میں اکیلے انگریز ڈٹے ہوئے تھے۔ ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں نے پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی نیتی کو اپنایا۔ وہ استھانیہ شاسکوں کا ان کے ورودھیوں کے خلاف سمرتھن کرتے تھے اور استھانیہ شاسک یا رجواڑے انہیں بھاری ماترا میں ٹیکس اور دھن دیتے تھے۔ یہ ساری دولت ایسٹ انڈیا کمپنی کے خزانے میں جاتی تھی اور اس کا ایک چھوٹا حصہ ہندوستانی سمراٹ کو جاتا تھا۔ انگریزوں کو معلوم تھا کہ یہ کمزور سمراٹ آج بھی ان کے لیے سر درد بن سکتے ہیں۔ وہ انہیں ستہ میں بنائے رکھنا چاہتے تھے تاکہ کمپنی کی گتویدھیوں کو قانونی جامہ پہنایا جا سکے اور ورودھ ہونے کی استھتی میں انہیں آگے کیا جا سکے، لیکن وہ انہیں اتنا مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کہ آگے چل کر بھارتی اپ مہادویپ سے انگریزوں کے ہاتھ کاٹ سکے۔ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا کوہ نور 1773 میں افغانستان کے راجہ احمد شاہ درانی کی موت تک افغانستان میں ہی رہا، लेकिन दुर्रानी के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। उसके बाद अहमद शाह दुर्रानी के पोते पोतियों को शासन सौंप दिया गया और कोहिनूर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा। अफगानिस्तान में कोहिनूर का अंतिम मालिक शाह शुजा था। वो शाही विलासिता से प्यार करता था, एक सोने के सिंहासन पर बैठता था और एक हाथ में एक ब्रेसलेट पहनता था जिसमें कोहिनूर जड़ा हुआ था और वो अपनी चमक से हर किसी को हैरत में डाल देता था। लेकिन ये सारी महिमा अस्थाई थी। शाह शुजा के भाई महमूद ने कई अफगान कबीलों की मदद से काबुल पर हमला कर दिया और शाह शुजा का तख्त पलट कर दिया। शाह शुजा कश्मीर भाग गया, जो उस समय अफगानिस्तान का एक प्रांत था। उसने अपनी पत्नी और परिवार को भारतीय राज्य पंजाब भेज दिया और कोहिनूर को अपनी पत्नी को सौंप दिया। शाह शुजा कश्मीर में कोई मुनासिब ठिकाना तलाश नहीं कर सका और कश्मीर के शासक ने कोहिनूर के लालच में उसे जेल में डाल दिया। शुजा की पत्नी ने पंजाब के शासक के यहाँ शरण ली और उससे वादा किया कि अगर वो उसके पति को कश्मीरी शासक के चंगुल से आज़ाद करा देगा तो वो उसे कोहिनूर सौंप देगी। पंजाब के सैनिक तेजी से कश्मीर की ओर बढ़े और उस किले को उन्होंने घेर लिया जहां शाह शुजा को बंद करके रखा गया था। महल के रक्षक अधिक देर तक विरोध नहीं कर सके, किले ने आत्मसमर्पण कर दिया और पंजाबी सैनिकों ने शाह शुजा को एक काल कोठरी में बंद पाया। वो उसे आज़ाद करके पंजाब ले गए। अब शाह शुजा की पत्नी को अपना वादा निभाना था। इस तरह कोहिनूर पंजाब के शासक के पास पहुँच गया। अंग्रेज जहां अफगानिस्तान की घटनाओं पर नज़र रखे हुए थे, वहीं हिंदुस्तान में अपने अंतिम ताकतवर प्रतिद्वंद्वी के साथ युद्ध में व्यस्त थे। मराठा योद्धा और निडर कौम थी जिसने 17 वर्षों तक अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और दक्षिण भारत में उनके प्रवेश को रोक रखा। लेकिन अंग्रेज़ों ने कई मुख्य मराठा संप्रदायों के बीच पैदा हुए मतभेदों का फ़ायदा उठाया और प्रत्येक कबीले के विरोध को एक एक करके कुचल दिया और उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अब पंजाब राज्य को छोड़कर करीब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। पंजाब भारत का एक राज्य था जो अफगानिस्तान के पड़ोस में स्थित था और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों को पंजाब पर कब्जा करना ज़रूरी था। पंजाब के शक्तिशाली शासक की सन 1838 में मौत हो गई। उसके बाद 12 वर्षों के दौरान 4 लोगों ने पंजाब पर राज किया। आंतरिक विवाद किसी से छिपे नहीं थे। यहाँ की गली और कूचों के साधारण लोगों को भी इसकी जानकारी थी। अंग्रेज़ों ने भारत के सभी क्षेत्रों को जीतने के बाद पंजाब पर आक्रमण की तैयारी की। पंजाब में दरबार के भीतर के झगड़ों ने सेना पर भी बुरा असर डाला था। जब अंग्रेज़ों ने युद्ध शुरू किया तो पंजाब की सेना टिक नहीं पाई। हालांकि पंजाब के साथ ये युद्ध 11 साल चला, लेकिन अंततः पंजाब के 12 वर्षीय शासक को भारत में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के सामने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। महल में आयोजित किए गए समारोह में डलहौजी ने पंजाब की स्वाधीनता की समाप्ति की घोषणा की। पंजाब सरकार की सारी संपत्ति बिना किसी अपवाद के जहां भी मौजूद थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही हो गई। इसके अलावा पंजाब के शासक को अपने राज्य या किसी अन्य क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा छोड़ना पड़ा। इसके बदले कंपनी ने उनके लिए वार्षिक वेतन निर्धारित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शासक ने कोहिनूर को इंग्लैंड की रानी को भेंट कर दिया था। ऐसा हीरा जो अब सुंदरता और धन के प्रतीक से कहीं ज़्यादा शक्ति का प्रतीक था, अंग्रेज प्रतिष्ठा और शक्ति के इस प्रतीक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। अप्रैल 1850 में कोहिनूर को इंग्लैंड स्थानांतरित किया गया। लंदन में क्वीन विक्टोरिया ने हीरे को और अधिक चमकाने के लिए उसे फिर से तराशने का आदेश दिया। जौहरी ने इसे 38 दिनों तक तराशा, जिसके बाद उसका 43% वजन घट गया और ये 108 कैरेट का रह गया। इसके बाद रानी के ताज में कोहिनूर को जड़ा गया। जैसे ही अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना कब्जा पूरा किया, कोहिनूर रानी विक्टोरिया तक पहुंच गया। मानो यह अनोखा हीरा भारत की अतुलनीय भूमि की निशानी हो, वो भूमि जिस पर कब्जा हो चुका था, लेकिन उस पर राज करना इतना आसान भी नहीं था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लोकप्रिय आंदोलन शुरू हो गए। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता वापस ले ली, लेकिन कोहिनूर अभी भी इंग्लैंड में है और वापस भारत नहीं लाया जा सका। आज कई देशों का इस अनोखे हीरे पर दावा है। ہندوستان کا ماننا ہے کہ کوہ نور کئی مولیوان اور مہنگی کلا کرتیوں میں سے ایک ہے جسے انگریزوں نے اوپنیویشک یگ کے دوران ہندوستان سے باہر استھانانترت کیا تھا۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ برٹشوں کو اپنے اوپنیویشک کال کی بھرپائی کے لیے اس ہیرے کو بھارت کو واپس کر دینا چاہیے۔ دسمبر 2015 میں ایک پاکستانی وکیل نے کوہ نور ہیرے کو پناہ پراپت کرنے کے لیے عدالت میں یاچکا دائر کی تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ہیرا پاکستان کے پنجاب راجے کا ہے جس پر انگریزوں نے بل پوروک قبضہ کر لیا تھا۔ اس انوکھے ڈائمنڈ کا سفر کب اور کیسے ختم ہوگا یہ آج بھی کوئی نہیں جانتا۔